ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਏਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਾਮੋ ਸੁਨ ਮਨ ਪੀਜੈ, ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਾਮੋ ਸੁਨ ਮਨ ਪੀਜੈ।
ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਯੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਏ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੇ, ਤੁਕ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਹਮੇ ਜਬ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਫਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਯਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਹਿ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਹਮ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆ ਬਣਿਆ। ਹਮ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਬ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਂਗੇ, ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੇ ਬਚ ਸਕੇਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਰਮ ਪੁਲੀ ਲੋਕਾਈ। ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਜੀਵ ਬੇਕਾਰ ਭਰਮੋਂ ਮੇਂ ਫਸ ਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਤਰਫ ਦੌੜਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਤਰਫ ਦੌੜਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਧਕਾਲ ਪਛਤਾਹੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰਾਸਤਾ ਛੋੜ ਕਰ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਚਲੇਂਗੇ, ਆਖਿਰ ਮੌਤ ਕੇ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕਰ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਹਮ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਭ ਜੀਵ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਹਮ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਕਤਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਪਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਵਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸਕਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਤੀ, ਇਹ ਕਭੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ, ਇਸਕਾ ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਹਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਵਹਿ ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਿ ਹਮਾਰੀ ਦੇਹ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੇ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੇ ਨਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪਾਲਣ ਜਾਈ। ਵਹਿ ਮਾਲਿਕ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਹਮ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਜੀਵ ਕਿਤਨੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈਂ, ਮੁਗਧ ਹੈਂ, ਗਵਾਰ ਹੈਂ ਕਿ ਉਸਕੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਢੂੰਢਣੇ ਮੇਂ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈਂ। ਮਨ ਮੇਂ ਖਿਆਲ ਆਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਯਾ ਦੇਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਹਮ ਆਂਖੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਹਮੇਂ ਤੋ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ, ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਏਕ ਹੀ ਘਰ ਮੇਂ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਮੇਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਕਭੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ, ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਕਭੀ ਸੁਹਾਗਨ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸਕਾ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹਉਮੇ ਪਾਈ। ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੇ ਯਾ ਅਹਿਮ ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। जिसके कारण हम अपने अंदर उस परमात्मा को पा नहीं सकते। हम में क्या है, ये जो सारा दिन सोचते रहते हैं, ये मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, यही हम में है। जिसको सारा दिन हम मेरा मेरा करते हैं, असल में सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग और इस रचना को अपना समझे बैठे हैं। ये रचना आज तक ना किसी की बनी है न बन सकती है, लेकिन हम इसको अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं, वह हमें इसके मोह या प्यार में फंसा देती है। ये मोह या प्यार ही हर एक को देह के बंधनों में खींच कर ले आता है। मैंने अर्ज की थी कि हमारी आत्मा तो पवित्र है, निर्मल है, लेकिन मन का साथ ले लेने के कारण अति मैली और गंदी हो चुकी है। आप देखें, एक बिजली के बल्ब की कितनी तेज रोशनी होती है, लेकिन 15-20 काले कपड़े इसके इर्द गिर्द लपेट दें, जहां भी लेकर जाएं अंधेरा ही नजर आता है। काले कपड़े लपेटने से बल्ब की रोशनी कम नहीं होती, लेकिन उस रोशनी को हम देख नहीं सकते, उससे हम फायदा नहीं उठा सकते। काले कपड़े उतारने शुरू कर दें, हम रोशनी भी देख सकेंगे, उससे फायदा भी उठा सकेंगे। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि हमारी आत्मा पवित्र है, निर्मल है, लेकिन इसके इर्द गिर्द मन के काले कपड़े चढ़े हुए हैं, इसलिए हमें मालिक का पता नहीं चलता, हमें अपने अंदर मालिक नजर नहीं आता। हमें जो भी कोशिश करनी है, आत्मा और मन की गांठ खोलने की करनी है, मन को वापस ब्रह्म त्रिकुटी या अपने ठिकाने पर पहुंचाने की करनी है। आपको पता है कि दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अवकल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, रोज मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सरोवरों में स्नान करते हैं, जोश में आकर कान पड़वा लेते हैं, जटाएं रख लेते हैं, शरीर पर राख लगानी शुरू कर देते हैं। ये सारे साधन, सारे तरीके हम केवल मन को ही काबू करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती मन को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर मन कहीं लगता नहीं, ठहरता नहीं, दुनिया में आकर फिर हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सप पिड़ाई पाइए बिक अंतर मन रोस। आपके समझाने का मतलब है कि जबरदस्ती मन को दुनिया में से निकालना इसी तरह है जिस तरह सांप को घेर कर पिटारी में बंद कर दें। पिटारी में बंद हो जाने से सांप के अंदर ना गुस्सा कम होता है, ना जहर जाता है। जब तक वह पिटारी में बंद है, वह बेबस है, लाचार है। जब भी उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, डंग जरूर मारेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी जहर की थैली निकाल दें, वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हार्मलेस हो जाता है, चाहे सारा दिन उसे गले में डाल रखें। महात्मा हमें प्यार से समझाते हैं कि अगर हम हठ कर्मों के जरिए मन को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं और सोच लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया है, बड़ा पवित्र हो गया है, तो ये हमारी भूल है। वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं मन के अंदर दबी रहती हैं। जब इनका जोर पड़ता है, मन फिर हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है, बल्कि हमारी हालत आम इंसानों से भी बुरी और बदतर होनी शुरू हो जाती है। जितना हम किसी चीज़ को दबाते हैं, उतना ही वो ज़्यादा रिएक्ट और रिबाउंड करती है। गुरु घर और संतों महात्माओं का उपदेश है कि जबरदस्ती या हठ कर्मों के जरिए कभी मन को काबू नहीं कर सकते। अगर मन को काबू करना है, तो उसके स्वभाव के बारे में बड़े सोच और विचार से काम लेना पड़ता है। हम देखते हैं कि मन लज्जत का आशिक है, एक चीज़ से प्यार करते हैं, अगर उससे अच्छी और साफ सुथरी कोई और चीज़ नज़र आ जाए, तो हम पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया का कोई भी मोह या प्यार हमारे मन को लेकर हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वह शक्लें, वह पदार्थ जिनको किसी वक़्त अपना बनाने के लिए ज़िंदगी तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा समय और वक़्त आता है जब हमारा मन उन शक्लों से नफ़रत करनी शुरू कर देता है। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि जब तक हमारे मन को दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया का मोह और प्यार कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है जिसको पाकर मन संसार के भोगों को छोड़ता है। यहाँ गुरु साहब कहते हैं, रामा रम रामो सुन मन पीजय, कि उस राम नाम का जाप करो, उस राम नाम को सुनो, इससे तुम्हारा मन बिंध जाएगा, काबू आ जाएगा, वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जिस राम नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, वह सुनने का भी विषय है, जपने का भी विषय है। राम नाम से गुरु साहब का मतलब कोई लफ्ज नहीं है, ये वह ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो हर एक के अंदर रमी हुई है। गुरु नानक साहब समझाते हैं, राम नाम मन भेदया अवर कह करी विचार, सबद सुरत सुख उपजय प्रभ रातो सुखसार। हमारा मन जो हिरण की तरह विषय विकारों में फंसकर दिन रात भटकता और तड़पता फिरता है, जब ये अंदर राम नाम से जुड़ जाएगा, बिंध जाएगा, वश में आ जाएगा, अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। इसलिए राम नाम से मतलब सुरत को शब्द के साथ जोड़कर मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाना है। जब इस मन पर रंग चढ़ जाएगा, फिर इसको सुख का सांस प्राप्त हो जाता है, इस मन को शांति प्राप्त हो जाती है। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची है, निर्मल है, कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार छोड़ देता है। जो चीज़ हमारे मन को दुनिया के मोह या प्यार से निकालकर हमारे अंदर मालिक के मिलने का इश्क और प्यार पैदा करती है, गुरु साहब कहते हैं, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड़ियों के साथ तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। ओनली एन अटैचमेंट कैन क्रिएट डिटैचमेंट, डिटैचमेंट कैन नेवर क्रिएट अटैचमेंट। अगर किसी लड़की को शादी करने से पहले समझाएं कि देख बेटा, तेरी शादी की तारीख बड़ी नज़दीक आ गई है, अब तू माता पिता का प्यार छोड़ दे, बहन भाइयों का प्यार छोड़ दे, सखियों सहेलियों का प्यार छोड़ दे, वह बेचारी कितनी कोशिश करे कभी कामयाब नहीं हो सकती। जब उसकी शादी हो जाती है, पति के साथ उसका प्यार पैदा हो जाता है, उसको भाई बहन भी भूल जाते हैं, माता पिता भी भूल जाते हैं, और सखियाँ सहेलियाँ भी भूल जाती हैं। एक आदमी के मोह या प्यार ने सब रिश्तेदारों का मोह या प्यार उसके अंदर से निकाल दिया। ये हमारे मन की आदत है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि जब तक आप अंदर शब्द की लज्जत हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर से दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार नहीं निकल सकता। इसलिए गुरु घर ने इतनी शब्द की महिमा की है, इतना शब्द या नाम का प्रचार किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा। ये जो हमारा शरीर है, ये हाड़ चाम और मांस का बना हुआ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है, इसके अंदर परमात्मा ने बेशुमार वस्तुएं, बेशुमार भंडार रखे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ की समझ या सोच करने का तरीका तब पता चलता है जब कोई मालिक का सच्चा भगत और प्यारा मिल जाए। मालिक के प्यारे क्या समझाते हैं? आप कहते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। वह समझाते हैं कि हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। उस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। शरीर के अंदर रूह या मन की जो जगह है, जिसको गुरु साहब 10वां द्वार कहते हैं, घर दर कहते हैं, मुक्ति का दरवाज़ा कहते हैं, वह जगह हर एक की आँखों के पीछे है। आँखों के पीछे से ख्याल उतरकर नीचे 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक आप आँखों के नीचे नीचे बैठे हैं, आप अभी अपने घर के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे, क्योंकि मालिक ने अपने घर जाने का जो दरवाज़ा लगाया है, वह आँखों के पीछे है। उसकी निशानी क्या रखी है? अनहद शब्द बजावणिया, कि उस नुक्ते पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मज़हब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख या ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर से उस आवाज़ को भी सुन सकता है, उस प्रकाश को भी देख सकता है। उसको गुरु साहब सच्चा शब्द, सच्चा नाम, राम नाम या हरि नाम कहते हैं। गुरु साहब उस ताकत को राम नाम कहते हैं क्योंकि वह रचना के कण कण में रमी हुई है। उसकी ध्वनि, उसका प्रकाश सारी रचना में समाया हुआ है। वह ताकत हमारे अंदर भी रमी हुई है और हमें अपने अंदर से ही उसमें रम जाना है, जज़्ब हो जाना है।
हरे हरे नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै।
आप कहते हैं वह नाम अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। आप नाम को अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको पीकर हम अमर हो जाते हैं। हमारा मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। उसकी लज्जत मीठी क्यों कहते हैं? अब जो बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, लोगों के गले काटने मीठे लगते हैं, शराबों कबाबों की लस्तें मीठी लगती हैं, धन दौलत मीठी लगती है, उस अमृत को पीकर ये हर चीज़ फीकी लगनी शुरू हो जाएगी। जिसको मीठी चीज़ मिल जाए उसका फीकी चीज़ की ओर कभी ध्यान नहीं जाता। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाएं, वह कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें क्यों खाएगा? इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि जब तुम अपने अंदर शब्द या नाम का अमृत पियोगे, आपका अपने आप ही रचना में से मोह या प्यार निकल जाएगा। तुम्हारी अहम की रुकावट अपने आप ही तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाएगी और तुम परमात्मा के साथ मिलाप करने के काबिल बन जाओगे। गुरु अमरदास जी ने कहा था, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इकठाई। हौमे और नाम की दुश्मनी है। जिसके अंदर नाम बस जाता है उसके अंदर से हौमे निकल जाती है, माया का मोह या प्यार निकल जाता है। गुरु अमरदास जी ने दावे के साथ कहा था, बिन शब्दे हौमे किन मारी। जितना मर्जी जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लो, अनेक उपाय और साधन करके देख लो, आप शब्द की कमाई के बिना अपने अंदर से माया का मोह, माया का प्यार नहीं निकाल सकेंगे। गुरु नानक साहब का कथन है, नानक हौमे रोग बुरे, जह देखा तह एका बेदन, आपे बक्से शब्द तुरे। हम दुनिया के सब जीव बड़ी बुरी तरह हौमे की बीमारी के शिकार हैं। आप कहते हैं, जिधर भी दुनिया में नज़र मारते हैं हर तरफ दुनिया के जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए हैं। वह कौन सी बीमारी है? वह मैं मेरी की बीमारी है, माया के मोह, माया के प्यार की बीमारी है। ये किस तरह दूर होगी? आपे बक्से शब्द तुरे। मालिक दया मेहर बख्शिश करके हमारा शब्द या नाम से ख्याल जोड़ देता है, जिससे अपने आप ही अंदर से माया का मोह, दुनिया का प्यार निकल जाता है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर का शब्द महारस मीठा। वह शब्द जिसके साथ गुरमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं उसकी लज्जत बहुत मीठी है। गुरु साहब कहते हैं कि वह महारस है, दुनिया के अंदर उससे ऊंची लज्जत कोई है ही नहीं। इसलिए आप समझाते हैं कि अगर तुम अपने मन को माया के मोह से निकालना चाहते हो, माया के प्यार में से निकालना चाहते हो, तुम अपने ख्याल को उस सच्चे शब्द के साथ जोड़ो, उस सच्चे नाम के साथ जोड़ो। आप उस नाम की आगे और महिमा करते हैं।
कासट में ज्यो है बसंतर, मथ संजम काढ़ कड़ी जय, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लई जय।
मन में ख्याल आता है, अगर मालिक ने इतनी ऊंची और निर्मल दौलत जिसको पाकर हम बादशाह बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर रखी हुई है, फिर हम मरण जन्म के दुखों और मुसीबतों में क्यों फंसे हुए हैं? अगर किसी के घर में करोड़ों रुपए का खजाना है, वह बाहर कौड़ियों क्यों ढूंढता फिरता है? दर बदर ठोकरें क्यों खाता फिरता है? गुरु साहब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, कासट मह ज्यो है बसंतर, मत संजम काड कड़ी जय। देखो, लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, उस अग्नि को ना कोई देख सकता है, ना ही उससे कोई फायदा उठा सकता है। जब युक्ति से लकड़ी पर लकड़ी रगड़नी शुरू कर देंगे, फिर अग्नि पैदा होगी। हम उसको देख भी सकते हैं, उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बेशक आग लकड़ी के अंदर ही होती है, लेकिन जब तक युक्ति से लकड़ी में से अग्नि पैदा नहीं करते, हम अग्नि से फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं? आप कहते हैं, राम नाम है जोत सबाई, तत् गुरमत काड लई जय, कि मालिक ने हर एक के शरीर के अंदर राम नाम की ज्योति रखी हुई है। राम नाम की ध्वनि हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। बेशक वह ज्योति हमारे हर एक के अंदर है, वह धुनकार धुने हमारे हर एक के अंदर है, लेकिन वह किस तरह मिलती है? गुरमत काड लई जय। जब तक गुरमुखों के उपदेश पर चलकर उस ज्योति को अपने अंदर प्रकट नहीं करते, उस धुन को अपने अंदर नहीं सुनते, तब तक हमारा मन निर्बल या पवित्र किस तरह हो सकता है? आपके समझाने का भाव है कि वह जो राम नाम की ज्योति है, वह सबके अंदर है। ये नहीं कि वह एक कौम के अंदर है या एक खास मजहब या मुल्क वालों के अंदर है। जिस जीव को भी परमात्मा ने दुनिया के अंदर पैदा किया है, उसके अंदर वह राम नाम की ज्योति रखी हुई है। उसी के अंदर दिन रात नाम की धुनकार धुने उठ रही हैं। उस शब्द के अंदर नाद या आवाज़ भी है, उसके अंदर ज्योति भी है, प्रकाश भी है। गुरु नानक साहब ने कहा था, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहेब स्यों लिबलाई। सबके अंदर आँखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी की आवाज़ या धुनकार धुने उठ रही हैं। अगर हम खुशकिस्मती से उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उसकी आवाज़ को अपने अंदर सुनते हैं, पकड़ते हैं, तो साचे साहेब से लेवलाई, इस रचना में से हमारा मोह या प्यार अपने आप ही निकल जाता है। सच्चे परमात्मा से हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को संतों और महात्माओं ने निरत कहकर बयान किया है। इसके सुनने की शक्ति को गुरु नानक साहब ने और बाकी सब संतों महात्माओं ने सुरत कहकर बयान किया है। सुरत अंदर शब्द की आवाज़ को पकड़ती है, निरत अंदर शब्द के प्रकाश को देखती है। हमें उस आवाज़ के जरिए अपने घर का रुख कायम करना है, प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफ़र तय करना है, और फिर मंजिल दर मंजिल मन और माया के दायरे से पार निकल जाना है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि अगर हम डेरे से सैर करते करते दूर निकल जाएं, रात हो जाए, हमें पता ना चले कि डेरा किस ओर रह गया है, तो हम क्या करते हैं? हम अंधेरे में खड़े होकर बड़े ध्यान से सुनते हैं कि डेरे की तरफ से कोई ना कोई आवाज़ आती हो, किसी सायरन की, किसी घंटी की, या किसी के शब्द पढ़ने की। उस आवाज़ को सुनकर हमें डेरे के रुख का पता चल जाता है। अब वहाँ अंधेरा है। अगर हमारी जेब के अंदर बैटरी या माचिस है, हम ऊंची नीची ज़मीन और झाड़ियाँ आदि देखते देखते फिर डेरे पहुँच जाते हैं। कौन सी चीज़ हमें डेरे वापस लाई? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश लाया। इसी प्रकार जो हम परमात्मा के घर को भूले हुए हैं, आँखों के पीछे पर्दा लगा होने के कारण हम बाहर निकले हुए हैं, माया के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं, मालिक ने अपने तक पहुंचने के लिए हर एक की आंखों के पीछे आवाज़ भी रखी हुई है, प्रकाश भी रखा हुआ है। जब हम गुरुमुखों द्वारा समझाई युक्ति और साधन के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए अपना ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, हम अपने अंदर उस नाम की ज्योति के भी दर्शन कर सकेंगे, उस राम धुन निर्मल नाद को भी अपने अंदर सुनना शुरू कर देंगे। उस ज्योति के दर्शन करना, उस धुनकार धुन को सुनना गुरमत है। आप समझाते हैं कि जब तक हम इस गुरमत पर नहीं चलते, हम वापस मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, वह जो राम नाम की ज्योति है, वह हर एक के अंदर 24 घंटे आंखों के पीछे जलती रहती है। आप गुरमुखों के उपदेश पर चलकर उसको देख भी सकेंगे, उसके प्रकाश को देखकर रूहानी सफ़र भी तय कर सकेंगे। यही सच्चा गुरमत है जिसको गुरु साहब आगे खोल कर समझाते हैं।
नौ दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजे।
आप समझाते हैं गुरमत से मेरा ये मतलब है नौ दरवाजे नवे दर फीके कि जो हमारे रूह और मन की जगह है वह आंखों के पीछे है। हमारा मन वहां से उतरकर नौ द्वारों के जरिए बाहर फैला हुआ है। इसको ये लज्जतें फीकी कब लगती हैं, रस अमृत दसवें चुईजे। जो हमें भोगों की लज्जतें बड़ी मीठी लगती हैं जब मन आंखों के पीछे आकर अंदर उस अमृत को पीना शुरू कर देता है, इसको विषय विकारों इंद्रियों के भोगों की सब लज्जतें फीकी लगने लगती हैं। जो हीरे जवाहरात इकट्ठे करने में लगा हुआ है उसको पता चल जाता है कि मैंने तो व्यर्थ में कौड़ियाँ इकट्ठी करते करते सारी उम्र गुजार दी। जिसको मीठी चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है उसको अपने आप पता चल जाता है कि मीठी चीज़ में और फीकी चीज़ में कितना अंतर है। गुरु साहब कहते हैं कि रस का भरा हुआ अमृत हमारे हर एक की आंखों के पीछे बरस रहा है, लेकिन हमारा मन वहां से उतरकर सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। दिन रात कितनी भी बारिश क्यों ना हो, अगर एक बर्तन को ही उल्टा करके रख दें उसके अंदर पानी का एक कतरा भी किस तरह जाएगा। हिम्मत करके बर्तन सीधा कर दें तो वह बर्तन एक बारिश नहीं दूसरी बारिश जरूर भर जाएगा। गुरु साहब कहते हैं कि गुरमत ये है कि ये जो तुम्हारा मन अब उल्टा हुआ बैठा है इसको सीधा कर लो। तुम्हारा मन आंखों के पीछे से उतरकर नौ द्वारों के जरिए सारी रचना के अंदर फैला हुआ है। गुरमत का मतलब है कि तुम सिमरन और ध्यान के जरिए फैले हुए ख्याल को वापस एकाग्र करके आंखों के पीछे इकट्ठा करो, वहां तुम्हारा बर्तन सीधा हो जाएगा। जो रस से भरा अमृत अंदर बरस रहा है वह स्वयं ही तुम्हारे मन के बर्तन को भर देगा। जिस वक़्त मन को वह लज्जत आनी शुरू हो जाएगी उसको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तो व्यर्थ ही इंद्रियों के भोगों में फंसकर अपना वक़्त बर्बाद करता रहा हूँ। इनकी लज्जतें तो फीकी हैं और इनका मोह या प्यार ही हमारे दुखों का कारण था। ये उस वक़्त पता चलता है जब अंदर रस से भरे हुए अमृत को पीते हैं। जिस अमृत की गुरु घर ने इतनी महिमा की है वह अमृत कभी किसी को आज तक बाहर से नहीं मिला। गुरु अंगद देव जी कहते हैं जिन वड्याई तेरे नाम की ते रते मन माहें, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहें। एक ही सच्चा अमृत शब्द या नाम है। केवल इस अमृत में मन को रंग लेने से ही परमात्मा से मिलने की बड़ाई मिलती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुर न लागी आए। आप फरमाते हैं कि माया की तृष्णाओं को हमेशा के लिए शांत करने वाला एकमात्र सच्चा अमृत प्रभु का नाम है। जो लोग गुरमत पर चलकर गुरमुखों के मत के अनुसार सिमरन और ध्यान की सहायता से मन को आंखों के पीछे एकाग्र करके अंदर उस अमृत की लज्जत हासिल कर लेते हैं, उनके अंदर से माया की तृष्णा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उनका मन हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है और वे लोग परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि वह अमृत उस वक़्त मिलेगा जब आप आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करेंगे। जब तक हमारा ख्याल ही वहाँ इकट्ठा नहीं होता जहाँ दाता दाद दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, अमृत रूपी नाम बरस रहा है, उस अमृत को हम पी किस तरह सकेंगे। आपके समझाने का मतलब है कि गुरमत का मतलब ही यही है कि नौ द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे खड़ा करके अंदर रस के भरे हुए अमृत को पियो। इस अमृत को पीकर तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और तुम उस परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाओगे।
कृपा 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 कर प्यारे, गुरे शब्दी हर रस पी जय।
गुरु रामदास जी ने पिछली 4-5 तुकों में गुरु नानक साहब के घर के उपदेश के बारे में बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छी तरह हमें समझाया है कि मालिक हमारे अंदर है, मन की हमारे अंदर रुकावट है। मन जब भी निर्मल होगा शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके, वह जो नाम है जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि होती है उसी प्रकार वह हमारे जिस्म के अंदर है, लेकिन जब तक हम उसको प्रकट नहीं करते हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। फिर आपने ये भी समझाया है कि नाम के अंदर प्रकाश भी है, नाम के अंदर धुनकार धुने भी हैं और वह अमृत भी है, लेकिन मिलता तब ही है जब गुरुमुखों के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। मन में ख्याल आता है कि ये कौन सी मुश्किल बात है, क्यों ना हम सभी गुरुमुखों के पास जाकर उस शब्द को पकड़कर अमृत पीना शुरू कर दें। कहते हैं कि ये चीज़ उस प्रभु ने अपने हाथ में रखी हुई है। कहते हैं कृपा 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 कर प्यारे, कि जब तक वह मालिक हम पर कृपा या दया मेहर नहीं करता तब तक हमारा ख्याल ही मालिक की भक्ति की ओर नहीं जाता। गुरु अमरदास जी कहते हैं हर साचे पावे सा पूजा होवे, भाई उस परमात्मा को भाएगा, उस परमात्मा को मंजूर होगा तभी तू उसकी भक्ति कर सकेगा, क्योंकि हम दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वह दाता कहीं दया और मेहर करे, हमें कोई ठोकर लगे तो हमारा ख्याल दुनिया में से निकले और मालिक की भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। अंधे की क्या ताकत है कि अंधेरे से बाहर आ सके, जब तक आँखों वाला उसको आवाज़ देकर नहीं बुलाता या उंगली पकड़कर बाहर नहीं निकालता। वह दाता दया किस तरह करता है? आप कहते हैं गुर शब्दी हर रस पीजे, जिस वक़्त वह हमें नाम के अमृत की लज्जत देना चाहता है वह हमें गुरमुखों की, साधुओं संतों और महात्माओं की संगत दे देता है। इसलिए गुरु साहब हमारी ओर से उस मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा हम पर दया कर, मेहर कर, बख्शिश कर। किस चीज़ की मेहर मांगते हैं? कि हमें कोई ऐसा गुरमुख मिल जाए, मालिक का कोई भगत और प्यारा मिल जाए जो हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ दे, नाम के साथ जोड़ दे, जिससे हम अपने अंदर उस रस को, हरी रस को, मीठे रस को पी सकें, जिसके जरिए हमारा दुनिया में से मोह निकल जाए, दुनिया में से प्यार निकल जाए।
काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हरे रस की जय।
आप समझाते हैं कि ये जो देह है बहुत खूबसूरत शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरि का सौदा खरीद सकते हैं, मालिक की भक्ति कर सकते हैं। गुरु साहब के समझाने का भाव है कि देह के अंदर बैठकर हम एक ही सौदा खरीदने के लिए आए हैं, वह हरि रस है, वह मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है। ये जो इंसान का जामा है ये मालिक ने हमें अपनी भक्ति, अपने प्यार के लिए बख्शा है। ये दुनिया 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है, जिसके अंदर निकलने का मालिक ने एक ही दरवाज़ा रखा है, वह दरवाज़ा इंसान का जामा है। ये मौका मालिक इसलिए देता है कि हम इससे फ़ायदा उठाकर मालिक से मिलाप कर सकें। इसलिए आप हमें प्रेरणा देते हैं कि आप इससे फ़ायदा उठाकर उस मंजिले मकसूद को आँखों के सामने रखो, उस रूहानी सफ़र को तय करो, ताकि आपका देह में आने का मकसद पूरा हो सके। अपने कीमती वक़्त को व्यर्थ में ना गुवाओ।
रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवाली जय।
देह में बैठकर हमने हरि का सौदा क्यों खरीदना है? आप समझाते हैं कि जो नाम है वह अमूल्य है, अमोलक है, वह रतन लाल और माणिक है। गुरु साहब उसकी इन चीज़ों के साथ इसलिए उपमा देते हैं कि हमें समझ आ जाए कि नाम बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए ही उसको अमूल्य और अमोलक कह देते हैं, कि कोई भी दुनिया की धन दौलत, माल खजाना उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। लेकिन वह दौलत मिलती किस तरह है? सतगुरु सेवा लीजिए। जो सतगुरु की सेवा में आ जाते हैं वह इंसान का जामा हासिल करके उस नाम रूपी दौलत को पा लेते हैं। सतगुरु की सेवा से आपका क्या भाव है? सतगुरु की सेवा से मतलब उनके उपदेश पर अमल करना है। उनका उपदेश है कि आप सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। गुरु अमरदास जी ने कहा था, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। गुरुमुखों की ये सेवा है कि सुरत को शब्द के साथ जोड़कर दुनिया से मोह या प्यार को निकालो। आप कहते हैं, सतगुर सेवे तामल जाए, जीवत मरे हर्ष्यों चित लाए। सतगुरु की सेवा के जरिए ही तुम्हारे मन की मैल दूर होगी। सतगुरु की यही सेवा है कि जीते जी मरो, मालिक से प्यार पैदा करो, शब्द से जुड़कर दुनिया में से मोह निकालो। मालिक से प्यार पैदा करो, यही जीते जी मरना है और यही सतगुरु की असली सेवा है। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर मालिक के भगत और प्यारे दाते बनकर आते हैं, मंगते बनकर नहीं आते। इसलिए गुरु नानक साहब ने समझाया था, गुरु पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणिए से। अगर कोई गुरु और पीर होकर शिष्यों और सेवकों से मांगता फिरता है, उसके पैरों पर कभी माथा ही ना टेकें। किस तरह के महात्मा की खोज करनी है? काल खाए किछ हथों दे, जो स्वयं हक हलाल की कमाई करते हैं और साध संगत की निशुल्क सेवा करते हैं। आपको बाबा जी महाराज का पता है, हजूर महाराज का, सरदार बहादुर जी का, जिंदगी का पता है। सब पूर्ण महात्मा हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करते हैं। पलटू साहब को ले लो, जिन्होंने दुकानदारी का काम किया। दादू साहब को ले लो, जिन्होंने धुनिये का काम किया। संत नामदेव जी महाराज को ले लो, जिन्होंने कपड़ा छापने का काम किया। कबीर साहब ने कपड़ा बुनने का काम किया। गुरु रविदास जी ने जूते बनाने का काम किया। महात्मा हमें मिसाल बनकर समझाते हैं कि किस तरह हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की मुफ्त सेवा करनी है, और उनकी असल सेवा सुरत और शब्द की कमाई है।
सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, पर सागर भगत करी जय, कृपा कृपा कर दीन हम सारंग, एक बूंद नाम मुख दीजै।
अब बड़ी सुंदर मिसाल देकर फरमाते हैं कि नाम की कमाई करने का शौक किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की बिरह और तड़प होनी चाहिए, किस तरह का प्यार होना चाहिए। आप समझाते हैं कि पपीहा हमेशा स्वाति बूंद के लिए तड़पता रहता है। जब तक उसकी चोंच के अंदर उस बारिश के पानी का कतरा नहीं जाता, वह रट लगाए रखता है। गुरु साहब कहते हैं कि हमारे अंदर भी नाम के लिए पपीहे जैसी तड़प होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। फिर पपीहा चाहे समुंदर के किनारे पर क्यों ना बैठा हो, जब चोंच खोलेगा उस बारिश के कतरे के लिए ही खोलेगा। गुरु साहब का मतलब है कि मालिक की भक्ति हमें केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है, दुनिया की इच्छाएं तृष्णाएं लेकर नहीं करनी। अगर इच्छाएं तृष्णाएं लेकर भक्ति करेंगे, उनको पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की पुख। हे प्रभु, तेरे बिना दुनिया की जो भी इच्छा करते हैं, हम दुखों और मुसीबतों को मांगने में लगे हुए हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जिस तरह पपीहे के अंदर स्वाति बूंद के लिए तड़प है, तुम्हारे अंदर उस अमृत रूपी नाम की तड़प होनी चाहिए, और जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, दूसरा कोई पानी नहीं पीता, इसी तरह हमें मालिक की भक्ति मालिक से मिलने के लिए करनी है, रचना की कोई इच्छा और तृष्णा लेकर नहीं करनी।
लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन को गुर दीजै, राम 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 रंग राते, रस रसक घटक नित पी जाए।
अब मन में ख्याल आता है कि बिरह और तड़प हमारे अंदर पैदा किस तरह हो सकती है, मालिक से मिलने के लिए इतना शौक किस तरह हमारे अंदर आ सकता है। आप उदाहरण देते हैं कि हमारा कपड़ा कितना भी मैला क्यों ना हो, जब रंग चढ़ाना हो हम किसी रंगरेज या ललारी के पास जाते हैं, ललारी उसको धोकर सज्जी के साथ उसका सारा मैल निकाल देता है, वह कपड़ा साफ हो जाता है। ललारी के पास रंग का भरा हुआ मटका होता है, वह कपड़े को उस मटके के अंदर डुबो देता है और उस मैले कपड़े पर बड़ा सुंदर रंग चढ़ जाता है। इस तरह गुरु साहब कहते हैं कि हम दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर अति गंदे हो चुके हैं, अति मैले हो चुके हैं, जन्मों जन्मों से कर्मों का बोझ इकट्ठा करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब हम गुरुमुखों की संगत में जाते हैं, साधुओं संतों महात्माओं की सोबत में जाते हैं, वह सत्संग के जरिए, वचन विलास के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए हमारे मन से दुनिया का सब मैल दूर कर देते हैं। वह हमारे मन को दुनिया से निकाल देते हैं, इसको दुनिया से उचाट कर देते हैं। फिर उनके पास शब्द या नाम के रंग का भरा हुआ मटका होता है, वह हमारे मन को उसमें डुबो देते हैं। जब हमारे मन पर नाम का रंग चढ़ जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है, फिर इसके अंदर मालिक से मिलने का शौक, मालिक का प्रेम, मालिक का इश्क पैदा हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि अपने पापों को देखकर ना घबराएं, कपड़े को मैला देखकर ना घबराएं, कपड़े को रंगरेज के स्पुर्द कर दें। ये उसका काम है कि कितनी भट्टियां चढ़ाता है, किस तरह रंग चढ़ाता है। हमें अपने आप को गुरुमुखों के सत्संग में रखना है, उनकी संगत और सोबत में रखना है। वह आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्याल को सारी रचना के मोह या प्यार से निकाल देते हैं और शब्द के साथ जोड़कर, नाम के साथ जोड़कर हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा कर देते हैं।
बसुदा सपत दीप है सागर, कड़े कंचन काड़ दरी जाए।
गुरु साहब कहते हैं कि जिनके मन पर नाम का रंग चढ़ गया है, जिनका मन उस नाम के रंग में रंगा गया है, जो दिन रात शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं, आप सात समुद्रों की बादशाही, दुनिया का राजपाट, हुकूमतें आदि उनके सामने पेश करें, क्या उनका ख्याल रचना की मान बढ़ाई, दुनिया की धन दौलत, दुनिया के पदार्थों की ओर जाता है, या वह मालिक से कुछ और ही मांगते हैं? वह क्या मांगते हैं, गुरु साहब आगे इशारा करते हैं।
मेरे ठाकुर के जन इन हुना बांछे, हर मांगे हर रस दीजै।
आप फरमाते हैं कि जिनके मन पर नाम का रंग चढ़ गया, शब्द का रंग चढ़ गया, जो उठते बैठते शब्द की कमाई में लगे हुए हैं, वह मालिक से दुनिया की चीजें नहीं मांगते, वह मालिक से केवल मालिक मांगने में लगे हुए हैं। उनको जब भी तसल्ली होगी, मालिक को मिलकर ही होगी। वह दाते से दाता को मांगते हैं, उससे कोई तृष्णा या इच्छा पूरी नहीं करवानी चाहते। गुरु साहब के समझाने का केवल इतना ही भाव है कि हमें नाम की कमाई परमात्मा से मिलने के लिए करनी है, इच्छाएं या तृष्णाएं पूरी करने के लिए नहीं करनी।
साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजे तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दी जाए।
आप फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर दो किस्म के इंसान हैं, एक मनमुख लोग हैं, दूसरे गुरमुख लोग हैं। ये भी उस प्रभु के हाथ में है, जिनको वह चाहता है गुरमुख बना लेता है। जिन पर उसकी बख्शिश नहीं होती, उन मनमुखों का उसकी भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं जाता। वह रचना के मोह या प्यार में ही उलझे रहते हैं। दोनों ही परमात्मा के बंदे हैं, लेकिन बड़ाई किनकी है? केवल गुरमुखों की है, मालिक के भक्तों और प्यारों की है। गुरमुख आप किसको कहते हैं? जिन्होंने अपना मन सतगुरु के स्पुर्द कर दिया, जिनका मन नाम के रंग में रंगा गया है, जो उठते बैठते चलते फिरते शब्द की नाम की कमाई में लगे हुए हैं, जो दिन रात मालिक से केवल मालिक को ही मांगने में लगे हुए हैं। आप मनमुखों की अवस्था बयान करते हुए कहते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जय। मनमुख लोग हमेशा भूखे हैं, जो मर्जी परमात्मा उनको दे दे, कितनी मान बढ़ाई दे दे। उन्होंने आज तक कभी मालिक से मालिक नहीं मांगा, वह दिन रात दुनिया की शक्लों और पदार्थों के पीछे ही भटकते फिरते हैं। आप समझाते हैं कि जो लोग दुनिया की शक्लों के पीछे दौड़ते हैं, दिन रात दुनिया के पदार्थों को मांगने में लगे हुए हैं, क्या तुम्हें उनकी संगत करनी चाहिए, सोबत करनी चाहिए? लख कोसन को विथ दीजिए, उनसे कम से कम लाख कोस दूर रहना है। मतलब भूले भटके भी मनमुखों की सोबत नहीं करनी चाहिए। हमारा मन संगत और सोबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। आप चोरों की संगत करें, चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है। जुआरियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। मालिक के भक्तों की संगत करते हैं, खुद ब खुद हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु रामदास जी ने कहा था, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याये। हे परमात्मा, अपने भक्तों और प्यारों की संगत दे, सोबत दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। गुरमुख हमेशा सत्संग के जरिए हमारे अंदर मालिक की भक्ति का शौक पैदा करते हैं, मालिक के मिलने का प्यार पैदा करते हैं।
हर 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 जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जाए।
आप कहते हैं, वह मालिक निर्मल है, पवित्र है, ऊंचा है, सचखंड का रहने वाला है। उसको कोई दुनिया का मैल नहीं लगा हुआ। वह कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता, इसलिए महात्मा उसको निश्चल कहते हैं। लेकिन आप फरमाते हैं कि जो हरि जन है, मालिक के सच्चे भगत और प्यारे हैं, वह भी मालिक से कम नहीं है। वह मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो गए हैं। लेकिन हरि जन आप किसको कहते हैं? जो नाम के रंग में रंगे हुए हैं, जो मालिक से मालिक को मांगते हैं, जो मालिक की भक्ति और प्यार के रंग में रंगे जाते हैं, जो सिर्फ मालिक को चाहते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि वह मालिक भी बहुत उत्तम है, पवित्र है, लेकिन जो उसके भगत हैं, हरि जन हैं, वह भी उत्तम हैं, पवित्र हैं। हम मालिक के भक्तों की और क्या महिमा कर सकेंगे? आप आगे इशारा करते हैं।
राम नाम तुले और ना उपमा जन नानक कृपा करी जय।
आप कहते हैं हम हरिजनों की मालिक के सच्चे भक्तों की इससे अधिक क्या महिमा कर सकते हैं कि वह मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो गए हैं। उनके अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसलिए गुरु अर्जन साहब ने कहा था, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। मालिक के भगत मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनके अंदर और मालिक के अंदर कोई भिन्न भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? आप फरमाते हैं, ज्यों जल तरंग उठे बव भांति, फिर सल्ले सलल समाएंदा। समुन्द्र में दो चार मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर समुन्द्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुन्द्र के साथ संबंध है, वही मालिक के भक्तों का परमात्मा के साथ संबंध है। लहर समुन्द्र का हिस्सा होती है। लहरें समुन्द्र में दिन रात उठती हैं और समुन्द्र लहरों का बना हुआ है। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि जब हमारी आत्मा उस नाम के रंग में रंग जाती है, कतरा समुन्द्र में जाकर समुन्द्र ही बन जाता है। उसके अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भिन्न भेद नहीं रहता। सब कुछ बयान करके हमारी ओर से मालिक के आगे यही अरदास करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने भक्तों की संगत दे, अपने प्यारों की सोबत दे, ताकि हम भी उनके जरिए तेरे नाम के साथ जुड़ सकें। गुरु साहब ने इस छोटे से शब्द के अंदर गुरमत के बारे में बड़ी अच्छी तरह हर पहलू को खोलकर समझाया है। आपने समझाया कि राम नाम कोई लफ्ज़ नहीं है, वह एक ताकत है जो हर जगह रमी हुई है। हमने अपने अंदर ही उस ताकत के अंदर जज़्ब और लीन होना है। उस ताकत के अंदर आवाज़ भी है, प्रकाश भी है। हमें आवाज़ और प्रकाश के ज़रिए अपना रूहानी सफ़र तय करके वापस अपने घर पहुंचना है। वह ताकत अमृत है, परमात्मा का रूप है। जो कोई उस अमृत को पीता है अमर हो जाता है, मालिक से मिलकर मालिक का रूप हो जाता है, हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से मुक्त हो जाता है। वह ताकत ही राम नाम है, सच्चा शब्द या सच्चा नाम है। हमें भी चाहिए कि अपने ख्याल को अंदर उस सच्चे शब्द के साथ जोड़ें, सच्चे नाम के साथ जोड़ें।
हर हरे हरे हर हरे जन उत्तम, क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम तुले और ना उपमा, जन नानक कृपा करी